सर्व करणे मला अर्पण करतात आणि अनन्य भावाने भक्ती करीत माझी उपासना करतात. माझ्या काही मन स्थिर करून भक्तीमध्ये संलग्न होतात व माझे ध्यान करीत असतात. हे पार मी त्यांचा जन्ममृत्यूरूपी संसार सागरातून त्वरित उद्धार करतो. तात्पर्य शिल्पावतरण करू. या ठिकाणी स्पष्टपणे म्हटले आहे की भक्त हे फार भाग्यवान आहेत, कारण भगवंत त्यांच्या संसार सागरातून त्वरित उद्धार करतात. शुद्ध भक्तीमुळे मनुष्याला साक्षात्कार होतो की भगवंत हे महान आहेत आणि जीव त्यांचा अधीन आहे. भगवंतांची सेवा करणे हे जीवाचे कर्तव्य आहे आणि जर त्याने हे कर्तव्य निभावले नाही तर त्याला मायेची सेवा करावी लागते. ओम ज्ञान
भूतमयी वंदेहं श्रीगुरो श्रीकृतावदकमलं श्रीगुरो वैष्णवाय श्रीरूपं साव्रजातं सहगणारघुनाथाधिकं सजीवं साद्वैतं सारदूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णवा
तो अनुभवी है, घीसते घीसते कई मात्रा में कण बहुत कम मात्रा में वो जो सोना है वो पत्थर को लग जाता है, ये ग्राहक नहीं जानते। तो फिर वो सोना मेन लेकर बैक्स लेकर उस पत्थर के ऊपर घुमाने लगता है और सारा जितना भी छोटे छोटे कण है वो उस मेन के पास आकर्षित हो जाता है, चिपक जाता है और वो सोना जाकर उस मेन को अग्नि में डालते हुए मेन अलग हो जाता है और सोना अलग हो जाता है। तो भक्त कहते भगवान वैसे ही है, हमारी भक्ति हमारी सेवा क्या है वो किधर दिखाई नहीं देती है। हम भक्ति के पत्थर पर खींचते हैं और जब निकलता है कुछ दिखाई नहीं देता। तो भगवान सोनार के समान वो ऐसा मेन अपने दया का मेन लेकर वो निकालते और दिखाते, देखो आपका सोना इतना मुझे मिल गया। और वैसे हमें अपनी दया प्रदान करते हुए वो हमारे अपने धाम ले जाने का प्रयास करते रहते। इसलिए कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जब हम लोग हाल ही जन्माष्टमी मना रहे थे उसका उद्देश्य क्या है? एक उद्देश्य गीता में बताया गया है, सर्व परित्राण साधुना विनाश श्री कृष्ण को भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्ट लोगों को दमन करने के, तो भगवान आते धर्म का स्थापन करने के लिए। तो बहुत भयंकारी कारण है, लेकिन उससे बढ़कर कारण यह है कि भगवान अपने दिव्य लीलाओं के द्वारा भक्तों को आकर्षित करते हैं और भक्तों को एक ऐसा अवकाश प्रदान करते हैं ताकि भक्तगण उनकी सेवा करें और सेवा ही मोक्ष है, वही मुक्ति है। और जब जीव कृष्ण की सेवा कितने किसी प्रकार से कर लेता है तो उसको कितना लाभ मिलता है। हमें कहानी सुना रहे थे, हमारे एक कॉलोनी में मंगलवार के दिन एक कार्यक्रम होता है और साथ साथ बच्चों के लिए भी, क्योंकि अगर बड़ों के कार्यक्रम में बच्चों को लेकर आपको वो आवाज करते हैं तो उनके लिए अलग कार्यक्रम किया जाता है। फिर बुधवार के दिन जन्माष्टमी थी, फिर जो कार्यक्रम ले रहे थे वो माता जी वो बच्चों को कह रहे थे कि कल भगवान का जन्मदिवस है और जन्मदिन हम लोग क्या करते हैं, किसी का जन्मदिन हो हम दूसरों को भेज देते, कुछ गिफ्ट देते। तो कल कृष्ण का बर्थडे है और जो बच्चे जो आते हो गए भक्त के बच्चे नहीं हो, बाहर के ऐसे आते हैं, वो लोग आकर कुछ कथाओं को सुनते हैं, कुछ प्रसाद देते हैं। तेरे बच्चों को ये माता जी कह रहे थे कल कृष्ण का जन्म दिवस है, इसलिए जन्मदिन होने के कारण उनको हमें कुछ भेंट देना चाहिए, कुछ गिफ्ट देना चाहिए। और कृष्ण को हम क्या भेंट दे सकते हैं? थोड़ा सा फूल, थोड़ा सा पत्ता, थोड़ा सा फल, थोड़ा पानी। अब कृष्ण को अर्पण करो, कृष्ण के जरिए हमें भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। एक चार पांच साल का बच्चा वो सुन रहा था, वो अगले दिन उठा, अपने समय के अनुसार स्नान किया और माता के पास आ गई, टुडे कृष्ण बर्थडे, आज कृष्ण का जन्म दिवस है। तो इसलिए हमें कहा गया कि हम कृष्ण को कुछ भेंट देना चाहिए। तो माता ने कहा क्या भेंट दो? वो कहने लगा कि ठीक है माता, कृष्ण को फल दे सकते हैं, फूल दे सकते हैं, कुछ फल दो कृष्ण के लिए। और वो बैग फ्रिज से खोला, वहां केवल दो ही फ्रूट थे। उसने कहा केवल दो ही फल है? हमें कृष्ण के लिए बहुत फल अर्पण करना है। माता ने कहा क्या करो, आज बहुत कम है, तुमने अपने पहले बताया नहीं, छोटा सा बालक गया आपने, उसको जो फोटो दिया था राधा गोपीनाथ का उसके सामने जाकर दो फल रखा और कहा कृष्ण प्लीज फल गिन, मुझे क्षमा करो, मेरे पास केवल दो ही फल है, आप उसको स्वीकार करो, नेक्स्ट ईयर आई विल मोर फ्रूट, अगले साल में आपको बहुत फल दूंगा। ऐसे करके वो प्रणाम कर रहा था, घर का घंटी बज गया, बल बज गया। तो वही भागा खोलने के लिए और बाहर क्या देखता है, उसके अंकल इतने बड़े टोकरी फल का लेकर आए थे और वो भागते हुए माता को कहने के लिए देखो कितने फल आ गए, इसको सबको कृष्ण को अर्पण करना है। यानी कि कृष्ण ऐसी भावनाओं को स्वीकार करते हैं। छोटा सा बालक है, कितना गुनाह कर सकता है? उसके दो फल कृष्ण के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन भक्ति भरने के कारण ही साक्षात अनुभव है। अगले साल इसी साल में भगवान उनके लिए लेकर भेज दिया, यही अर्पण करो। अगर भावना हो तो कृष्ण ही क्या करेंगे, सब योजनाओं को करते। हमारे विष्णुजन महाराज, एक कहानी मैंने सुनाई है, विष्णुजन महाराज एक बहुत प्रसिद्ध सन्यासी थे, श्रील प्रभुपाद जी के प्रमुख शिष्यों में थे। वो राधा दामोदर नाम के बट पार्टी थी, उसको लेकर सारे अमेरिका में प्रचार किया करते थे। और उस मंदिर में, उस बस में मंदिर था भगवान का, क्योंकि अमेरिकन लोग को मंदिर नहीं आएंगे, तो फिर मंदिर उनके यहां जाता था। तो उस मंदिर में हर रोज भक्तगण राधा दामोदर की आरती उतारते थे, ऐसे कॉलेज में खड़ा करके वहां आरती उतारते थे। अमेरिकन लोग बड़े अचंभे रह जाते थे, क्या चल रहा है, किसी पाउस की पूजा कर रहे हैं, वो देखने आते थे, खिलौना देखने आते थे। तो एक बालक, 3 साल का बालक, वो आया वहां वास्ते देखने के लिए, और उसके हाथ में हैमबर्गर है, दाहिने हाथ में हैमबर्गर, यानी कि जो गोमांस से बनाया जाता है। तो वो खा रहा था और देख रहा है, पुजारी आरती उतारा, फिर बाद में अर्घ अर्पण किया, भगवान को वस्त्र अर्पण किया। जब फूल भगवान को अर्पण करने लगे पुजारी, और फूल जाकर उन्होंने राधा दामोदर के चरण में चढ़ाया, गौरनिता के चरण में चढ़ाया, प्रभुपाद जी के चरण में चढ़ाया, ये बालक, छोटा सा बालक देख रहा है, वो भागा अपने घर के यहां, भागा और गार्डन में से अपने बाएं हाथ से कुछ फूल के पास पत्ते उन्होंने खींच लिया और भाग कर आया गाड़ी के पास, और अपने बाएं हाथ से उसको फेंका। और जो देख रहे थे, एक सन्यासी ने मुझे कहानी सुनाया, भक्ति विश्रम माधव महाराज, 35 साल के पहले घटना हुई थी, और जब ये कहानी सुना रहे थे उनकी आंखों से आंसू आ रहे कि अमेरिकन बालक जिनको कृष्ण के बारे में कोई जानकारी नहीं है, केवल देखकर नकल करते हुए जब उसने फेंका अपने बाएं हाथ से, वो फल और पत्ते सीधा जाकर कृष्ण के चरणों में गिर गए। अब ये भक्त उसको देखकर इतने प्रभावित हो गए, 35 साल के बाद भी जब उसका वो चिंतन करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, उनके आंखों से आंसू आने लगे। और कृष्ण देखो कितना उसको प्रेम से स्वीकार करेंगे। इसलिए भक्ति बहुत आसान है, और भक्त की कृपा से और भी भक्ति आसान बन जाती है, इसमें कोई क्लिष्ट नहीं है। प्रभुपाद जी भागवत के तात्पर्य में लिखते हैं, पाप करने के लिए बहुत कष्ट करना पड़ता है। हम देखते हैं लोग आज और आगे 11 दिन में बहुत दुर्भाग्यवश धर्म के नाम से बहुत पाप होंगे, शराब पीकर सब प्रकार के गलत कार्य होंगे, तो पाप करने के लिए बहुत कष्ट करना पड़ता है, पैसा इकट्ठा करो, कष्ट करो, और बाद में नरक में चले जाओ। लेकिन भगवान के धाम में जाने के लिए कोई कठिनाई नहीं, आसानी से प्रॉपर्टी तात्पर्य मिले। तो इसीलिए कृष्ण हमें अपने धाम ले जाने के लिए अपने भक्तों के द्वारा इतना सुंदर सुंदर आसान तरीकाओं को प्रदान करते हैं। तो उसके संपर्क में कितने किसी प्रकार से अगर उसके संपर्क में आ गए तो क्या होगा, उद्धार। तो श्री संप्रदाय के आचार्य वेदांत देशिका, उन्होंने बहुत सुंदर कृष्ण लीलाओं के बारे में चर्चा की है। उसने एक कहानी सुनाते हैं, एक बहुत सुंदर कहानी है, जब कृष्ण छोटे थे, बहुत नटखट लीलाएं कर रहे थे, और एक दिन भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा को जैसे जग गए तब से सताने लगे, स्नान नहीं करना चाहते थे, माता यशोदा ने जो पानी है उसको गर्म किया था और उस पानी में आम के पत्ते, तुलसी के पत्ते और जो टैमरिंड के पत्ते, इन अलग अलग प्रकार के जो हर्ब डालकर उसको गर्म किया था, वो सुगंधित था, वो नहलाना चाहते थे भगवान को। तो कृष्ण उस पानी को उल्टा कर देते और कहते कि हमें माखन चाहिए, और जब माखन देने लगी वो कहने लगी हमको दही चाहिए, और जब दही लेने लगी कि हमें दूध चाहिए, और जब दूध दिया वो कहने लगी दूध अच्छा नहीं, इस गाय का दूध दो। ऐसे बहुत यशोदा को सताने लगी, और जब यशोदा उसके पहले उनका दांत घिसना चाहती थी वो खुद तो नहीं कर पा रहे थे, और जब यशोदा उनका अपने दांत घिसने का प्रयास कर रही थी तो कृष्ण ने उनके उंगली को काट दिया। तो यशोदा को बहुत प्रेम के कारण क्रोध आ रहा था और उसके आंखें लाल हो रहे थे, और अंतिम जो क्रोध की सीमा फूट गई तो भगवान ने बहुत सारे मटकों को गिरा दिया, और यशोदा को यशोदा गुस्से से देख रही थी और पीछे की ओर आकर गाय के ऊपर पैर देते हुए दीवार को छलांग लगाकर वो भागने लगे। अभी यशोदा तो छलांग नहीं लगा सकती है, तो हाथ में लकड़ी लेकर वो कृष्ण का पीछा करने लगती है। कृष्ण भाग जाते, उनको पकड़ नहीं सकते। फिर वहां एक ब्रजवासी दूसरे गांव का, ब्रज का नहीं था परंतु दूसरा गांव का, मथुरा में जाकर माखन बेचकर अपने गांव की ओर जा रहा था, थक गया था, वहां बैठ गया था, मटके को बाजू में रखे वहां वो पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। तो कृष्ण उनके बाद भागकर आते हैं और कहते कि अब मुझे मेरी रक्षा करो, मेरी माता से, मेरी माता दुर्गा बन गई है और मुझे मारना चाहती है, उसके हाथ में बहुत बड़ी लकड़ी है और हाथ में रस्सी है, तो मेरी रक्षा करो। तो उसने पूछा मैं तेरी कैसे रक्षा कर सकता हूं, मैं तो तुम्हें यमुना पार नहीं करा सकता हूं क्योंकि मैं बूढ़ा हूं, मैं तुझे उस पेड़ पर ऊपर लेकर नहीं जा सकता हूं, मैं कैसे तेरी रक्षा कर सकता हूं। कृष्ण ने कहा इसकी चिंता मत करो, आपकी जो आपका जो मटका है बहुत बड़ा है, उसके अंदर मैं बैठ जाता हूं और आप उसके ऊपर बैठ जाओ, तो जब माता मुझे देखने आएगी उसको दिखेगा नहीं। तो कृष्ण से वो वृद्ध पूछते आपकी माता, मैं तो जानता नहीं हूं। तो कृष्ण कहते आपकी माता मेरी माता ऐसी है, उसका पूरा विवरण देते, वर्णन करते। तो भगवान कृष्ण उस मटके में जाने के पहले उसको कहता है फिर से, तो जब तेरी माता आएगी वो आपसे पूछेगी आपने मेरे कृष्ण को देखा, स्वाभाविक रूप से आप कहो कि कौन, मैं तो आपके बालक को नहीं जानता, कैसे दिखता है। जब वो आप ऐसा उसको प्रश्न करोगे कि मेरा पुत्र कैसे दिखता है, माता यशोदा मेरा वर्णन करेगी और वर्णन करते करते उसका क्रोध चला जाएगा। यह है कृष्ण कथा का प्रभाव। जो कोई कृष्ण के बारे में श्रवण करता हो तो श्रवण करने से ही जो रजोगुण है, क्रोध रजोगुण का प्रभाव है, काम रजोगुण का प्रभाव है। निवृत्त तरह रोगीय मानना भगवान सूत्र का मनोविराम। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि जो कृष्ण कथा है वो सबके लिए अनुकूल है। जो बीमार व्यक्ति है, भौतिक जगत में बीमार व्यक्ति है, जो रजोगुण से, जो रजोगुण के प्रभाव में आया हुआ है, वो कृष्ण कथा श्रवण करने से वो उसके लिए औषधि है। और जो महान भक्त है उनके लिए एक प्रेरणा प्रदान करता है। तो देखो कृष्ण कह रहे हैं कि माता यशोदा का क्रोध कम करने के लिए वो कुछ उपाय दे रहे। तो वृद्ध ने सुन लिया, कृष्ण उस मटके में चले गए, फिर वृद्ध व्यक्ति वो मटके ऊपर बैठ गए। कृष्ण को अंदर दम घुट रहा था और साथ साथ जो मटका है वो साफ भी नहीं किया था, मक्खन इधर उधर लगा हुआ था, तो मदर यशोदा माता यशोदा भाग कर आती है और देखती है विचित्र जो मटकी के ऊपर बैठे हुए ये वृद्ध, तो पूछती है कि ऐसे क्या बैठे हो। तो फिर वो वृद्ध ने पूछा ऐसा कोई नियम है वृद्ध ने कि ऐसा नहीं बैठा है, मैं तो वृद्ध हूं, मैं माथन भेजकर मेरे गांव जा रहा हूं, अब जानते हैं बूढ़ा होने के कारण थक जाता हूं तो विश्राम कर रहा हूं, उसमें क्या बड़ी गलती होगी। तो यशोदा को बुरा लगा, मैं ऐसा मैं नहीं कर रही थी, परंतु मैं मेरे बेटे को देख रही हूं, आपने देखा मेरा बेटा। तो जो बूढ़े व्यक्ति थे वृद्ध व्यक्ति, उन्होंने कहा ऐसी कि तेरा बेटा बहुत प्रसिद्ध है, सब जानते हैं उसको, मैं क्या जानू तेरा बेटा को है। तो कहने लगती आप मेरे बेटे को नहीं जानते हो, नहीं नहीं जानते। तो फिर यशोदा कृष्ण का वर्णन करती और वेदांत देशिका कहते हैं वैसे यशोदा उनका वर्णन करने लगी उसका सारा क्रोध चला गया, गुस्सा बंद हो गया। फिर कहती कि ठीक है अगर आप मेरे बेटे को देखोगे तो आप बता देना कि अब माता का क्रोध कम हो गया है, अब मैं उसकी पिटाई नहीं कर रही। फिर यशोदा वहां से चली जाती है। तो कृष्ण उस वृद्ध को कहते हैं अभी मुझे जल्दी बाहर निकाल दो यहां से, मेरा दम घुट रहा है। तब उस वृद्ध को कृष्ण के बारे में सब जानकारी आ गई, कृष्ण को देखा, कृष्ण के बारे में कृष्ण ही से सुन रहे थे और उसको ही यशोदा को रिपीट किया, उसके कारण साक्षात्कार हो गया कि बालक कौन है, एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और ये क्या प्रदान कर सकते हैं, ये मुझे इस भौतिक संसार से मुक्त कर सकते हैं और अब वो मेरे में बंध है, उनको मैं बंधन में रखा हूं जो मुझे मेरे बंधन से मुक्त कर सकते हैं। तो उस वृद्ध ने कहा कि मैं आपको बाहर निकालता हूं लेकिन एक कंडीशन है। कृष्ण ने कहा क्या कंडीशन है, मैंने सुना है कि तुम सबको मुक्त कर देता है, मुक्ति प्रदान करता है, आपकी सेवा प्रदान करता है, तो मैं चाहता हूं। कृष्ण ने कहा मैंने तो अभी सेवा दे दिया आपको, और कोई सेवा नहीं जानता मुक्ति, मैं तो कुछ नहीं जानता हूं, मैं क्या जाने मुक्ति। फिर कृष्ण कहने लगे ये माता यशोदा मुझे केवल मार दी थी, अभी तो मेरा दम घुट रहा है तो मुझे मार देगा, मुझे बाहर निकाला यहां से। तो वृद्ध ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, मैंने सुना है, मैं जान गया कि आप मुझे मुक्ति प्रदान कर सकते हो, मुझे मुक्ति प्रदान करो तभी आप यहां से बाहर निकलोगे। तो भगवान और उनकी परीक्षा करते हैं बालक के रूप में और कहता है मैं कोई पंडित नहीं हूं, मैं तो साधारण वृद्ध हूं, मुझे शरीर छोड़कर आपके धाम में जाना है, मुझे मुक्ति प्रदान करो। कृष्ण ने कहा ठीक है आपको मुक्ति मिल जाएगी, कब चाहिए मुक्ति, अभी। तो वृद्ध कहता है मैं जब तक रहूंगा मैं चाहता कि आपकी लीलाओं को देखते रहो, और उसके बाद मेरा शरीर छूट गया तो मैं आपके धाम जा सकता हूं। कृष्ण कहते तथास्तु, मैं अभी छोड़ो, देखो जो मुक्ति करने वाले हैं अभी बंधन में उसके, ऐसे भगवान की लीला है। तो वृद्ध ने कहा अभी नहीं, अभी नहीं, आपको मैंने मुक्त कर दिया, नहीं मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे अड़ोस पड़ोस है, देखो भक्त के अड़ोस पड़ोस होने से कितना लाभ है। कभी कभी लोग कहते हैं कि हरे कृष्ण वाले आजू बाजू में आ गए, जानते नहीं उनका भाग्य, जैसे हमारे मंदिर के इर्द गिर्द काफी लोग रहते हैं और अब घर छोड़ के जा रहे हैं, बहुत हो जाए तो हमने बहुत सहन कर ली। तो वृद्ध कहने लगे कि मैं अकेले मुक्त होने से क्या लाभ, यहां उसके अंदर शुद्ध भक्ति दया भी आ गई, कृष्ण की भावना आ गई, जैसे कृष्ण चाहते कि सबका उद्धार होना चाहिए वैसे वृद्ध चाह रहे थे कि मेरा उद्धार होने से क्या लाभ, बाकी का भी उद्धार होना चाहिए। और कहते मेरे अड़ोस पड़ोस मेरे गांव के 5 लाख लोग डिमांडिंग कितना कर रहे हैं, एक से जोड़े 5 लाख लोग हैं, उनका भी उद्धार कर रहे। कृष्ण के लिए ये तो बहुत बड़ा ही आपने मान लिया, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं तो मैं आपको छोड़ नहीं सकता। कृष्ण कहते ठीक है उनका भी उद्धार हो जाएगा, वो 5 लाख को भी 7 लाख लोगों को भी मैं उद्धार कर देता, अभी तो छोड़ दो। तब वो कहते नहीं है ऐसा नहीं हो सकता, वो कहते हैं भगवान से कहते हैं कि जिस कारण आप बच गए और जिस कारण मुझे मुक्ति मिल रहा है, ये जो बर्तन है इसको भी मुक्ति करो। तो कृष्ण के अभी तो विपर्यास हो गया, अतिशयोक्ति हो गई, आपको मैंने मुक्त कर दिया, आपके लोगों को मुक्त कर दिया, परंतु जो बर्तन है वो तो निर्जीव है, उसको कैसे मुक्ति मिल सकती है। और यहां श्री वैष्णव आचार्यगण ये जो सिद्धांत कहते हैं बहुत सुंदर है कि जो कुछ कृष्ण के सेवा में आता है वो चिन्मय है, और जो कृष्ण की सेवा में नहीं है वो निर्जीव है। भागवत के दूसरे स्कंद में शौनकादि ऋषिगण शुद्ध गोस्वामी से चर्चा कर रहे थे, और अचानक सारे ऋषियों को जो शौनक ऋषि के प्रमुख थे वो इस भौतिक प्रकृति के ऊपर भौतिक लोगों के ऊपर ऐसे श्लोकों का उल्लेख किया है, स्वामी भरा अंतर करे संसिद्ध पुरुष पशु न कर्ण पतो पे तो जात नाम गटाग्रज कि ऐसे लोग हैं जो जानवर के समान हैं, वो बड़े जानवरों की पूजा करते गदाग्रज की पूजा नहीं करते, स्वामी भरा अवसर करें संसिद्ध पुरुष पशु। और ऐसे बहुत लोगों को उल्लेख करते हो, क्या लाभ हो गया अगर कोई कृष्ण का नाम नहीं लेता, उसका जो श्वास है वो लोहार का जो पोता होता है भाता कहते हैं उसको मराठी में, हिंदी नहीं पता, तो उसका जो आवाज उसको आगे पीछे करने से क्या होता है, ऐसा लगता है कि वो श्वास ले रहा है, वैसे श्वास लेने के समान है। और जिसके अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है और बहुत बड़ा राजा भी हो तो उसका जो मुकुट है वो क्या करेगा, उसको ज्यादा ही जल्दी से उसको डुबा देगा। और एक श्लोक कहते हैं कि जिसने भगवान के चरणों की जो तुलसी है उसका जो गंध अपने नाक में डालने का कभी प्रयास नहीं किया है, और चलता फिरता मुर्दा है, वॉकिंग क्रॉप वॉकिंग कॉर्न, चलता फिरता वो मुर्दा है, जीवित है लेकिन फिर भी वो भूत है, ऐसे कठोर शब्दों का उपयोग करते हैं। तो यहां वो वृद्ध व्यक्ति यही सिद्धांत भगवान को कह रहे हैं कि जो भी आपके सेवा में है वो कैसे निर्जीव हो सकता है, वो चिन्मयी है, और जो आपके सेवा में नहीं है वो सब मुर्दा है, उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए इस मटके ने आपकी सेवा की है तो कैसे मुक्ति के लिए योग्य नहीं है, इसको भी मुक्त बना दो। कृष्ण जान गए जब तक इस मटके को मैं मुक्त नहीं करूंगा तब तक मेरी मुक्ति नहीं होगी, तो मटके को भी भगवान मुक्त कर देते हैं। और आचार्य गण कहते अगर आप वैकुंठ जाओगे जहां कृष्ण अपने लीलाओं को करते हैं, वहां यशोदा के घर में अभी भी आप उस मटके को देख सकते हो जो भगवान ने उसका उद्धार किया। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति ये जो कांतेत युक्त वैराग्य का, ये जो सिद्धांत युक्त वैराग्य का जो सिद्धांत, ये क्या है, जब हम हमारे बद्ध अवस्थाओं को, हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है ये सब बद्ध है, सब भौतिक है, हम स्वयं भौतिक हैं, हमारे इंद्रिया भौतिक है, हमारी बुद्धि भौतिक है, हमारा मन भौतिक है, हमारी जीवा भौतिक है। कभी कभी लोग कहते हैं भगवान दिव्य है और आपका जीवा भौतिक है, और नाम तो लिखा हुआ है हरे कृष्ण, ये भी अक्षरों में है, ऐसे भौतिक अक्षर से आप कहते हैं कृष्ण को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि ये सिद्धांत को जानते नहीं है। जब भावनाओं के द्वारा, गुरु के आश्रय के द्वारा हमारे इंद्रियों को, हमारे मन को, हमारे बुद्धि को और इंद्रियों के विषयों को जब कृष्ण के संपर्क में हम ले आते हैं गुरु के कृपा से, तब क्या होता है, प्रॉपर्टी जी कहते सब चिन्मय बन जाता है, सब आध्यात्मिक बन जाता है। ये माइंड है, ये तो निर्जीव है, परंतु कृष्ण के लिए उपयोग किया जा रहा है। सोचो जिस कंपनी ने इसको बनाया उसका उद्देश्य ये नहीं था कि कोल्हापुर में लेक्चर होगा और इसके लिए इसको बना होगा, उसने ऐसा कभी सोचा ही नहीं है। परंतु इसका उपयोग होने के कारण क्या उसको लाभ नहीं होगा, यह है भक्ति। प्रत्यक्ष रूप में उसको लाभ नहीं होगा बल्कि अप्रत्यक्ष रूप में लाभ होगा। हम सोच रहे हैं कि उसको भी लाभ होना चाहिए, तो केवल हमारे सारे भक्तों का निश अच्छा चिंतन के कारण उसको भी लाभ हो जाता है। यह है निर्जीव वस्तु को, या निर्जीव जैसे जो विचार युक्त ऐसे जीव जब कृष्ण के संपर्क में आ जाता है, कृष्ण के भक्तों के संपर्क में आ जाता है, सब कुछ चिन्मय बन जाता है। और ऐसे चिन्मय उसका कर्तव्य क्या है, चिन्मय वस्तु वो भौतिक पदार्थों के साथ वो रह नहीं सकता, वो जैसे कि पानी और तेल इकट्ठा नहीं आ सकता, या दूध और पानी हंस के सामने साथ में नहीं रह पाएंगे। हम दूध को देखकर पानी को अलग कर देता है, दूध को अलग कर देता है। वैसे जीव जब आध्यात्मिक तत्व को प्राप्त कर लेता है, आध्यात्मिक चिन्मय अवस्था को प्राप्त कर लेता है, फिर उसके लिए भौतिक जगत वो कैसा हो जाता, वैसे भगवान श्री कृष्ण मटके में फंस गए थे, वो सफोकन होने लगता है, उसका श्वास बंद होने लगता है, वो यहां वो रह नहीं सकता है, उसको लगता है कि मैं कब चलाऊंगा भगवान के नाम। जब ऐसी भावना आ जाती है कि भौतिक जगत से हमें कोई लेना देना नहीं है, कैसे आ गया हो, क्योंकि हमने हमारे अवस्था को चिन्मय बना दिया। और तब भगवान कहते हैं अब तुम उस चिन्मय धाम को प्राप्त करने के लिए योग्य बन गए, आपने आपका स्वभाव बना दिया, अब आपका कनेक्शन उस धाम में हो सकता है। ये भक्ति का सुंदर निरूपण से हमारे हम लोग गलगल में गए थे, मैं जो जिस स्कूल में पढ़ाई करता था वहां एक शिक्षक थे, और वो कभी कभी आते थे, वो मराठी मीडियम में थे, मैं कन्नड़ और मीडियम में था, और कभी कभी आया करते थे। और रिटायर होने के बाद वो न्यूज़पेपर पढ़े कि भगवद गीता कोर्स चल रहा है, और कोर्स अटेंड करने के लिए आ गए, और सामने किसको देखते हैं, मुझे देखते हैं, उनका विद्यार्थी लेक्चर दे रहा है, बड़े आश्चर्यचकित हो गए, मैं भी डर गया क्योंकि वो जुड़ो देखते थे वो जुड़ो टीचर भी थे, और हम लोग सब उनसे डरते थे बहुत, तो फिर थोड़ा मैं नर्वस हो गया। तो 7 दिन प्रवचन अटेंड किए, फिर भक्त बन गए, बहुत सेवा करते हैं, और उनकी पत्नी उनको कैंसर हो गया, टर्मिनल कैंसर, और डॉक्टर ने कहा कि आप बहुत जल्दी आपकी मृत्यु हो जाएगी। हम मिलने गए थे आनंद वृंदावन प्रभु, आपको सुनाएंगे ज्यादा, रोहिणी कुमार प्रभु बनाए, और उनकी जो भावना है ऐसी भावना हम बहुत कम मात्रा में देखते हैं। ऐसी भावनाओं को उन्होंने प्राप्त कर ली है, हम इसी बात को कहना चाहते हैं और प्रवचन को विश्राम देंगे। कैसे जब चिन्मय बनने से यहां की आसक्ति टूट जाती है, वो कह रहे थे उनका बेटा बैठा था, उनकी बेटी थी, उनके पति थे, वो कह रहे थे कि देखो कि हमें प्रेम रखना चाहिए परिवार के प्रति, और मैंने ऐसा किया है, मेरे बच्चों को अच्छे संस्कार प्रदान किए, वो बड़े हो गए, उनका विवाह हो गया, वो अभी सेटल हो गए, फिर इसके बाद उनके प्रति आसक्ति रखना ये मूर्खता का लक्षण है। वो कह रहे हमारे जीव को, वो मराठी में बोल रही थी, तिथे अड़कून ठेवायचं नाही, तिथं आपल्याला सुटलं पाहिजे। मी असं बोलतोय, मैं बोल रही हूं, मैंने परीक्षा की, क्या असली में मैं पालन कर रही हूं, क्या मेरे में मेरे पुत्र के प्रति और पुत्री के प्रति आसक्ति है? मैंने देखा और मैं बहुत प्रसन्न हो गए, मुझे कोई उनके प्रति आसक्ति नहीं है। मैंने प्रेम दिया है और बेटी और बेटा रो रहे थे, आनंद आंसू निकाल रहे थे कि ऐसी माता भी हो सकती है। मरते समय लोग अपने बेटा में अपने जो ग्रैंड डॉटर ग्रेट ग्रैंड डॉटर की चिंता करके मर जाते, क्या लग रहा है उसका। और ये कोई हर रोज मंदिर नहीं आ पा रही थी क्योंकि बहुत साल से बीमार थी, परंतु साधा स्वभाव, अपना जप करो, अपना थोड़ा शास्त्र का अध्ययन करो। वो कह रही थी मैं जान गई कि मेरी आसक्ति नहीं है, मैं उनसे अमित हो गई हूं और मैं बहुत प्रसन्न हूं। और वो कहने लगे मेरे पति है वो हर रोज उसके सामने बैठकर 21 माला जप करते हैं क्योंकि वो बोल नहीं सकती है, उनका शरीर बहुत जर्जरित हो गया। पति हर रोज बैठकर 21 माला जप करते हैं, खूब उनकी सेवा करते हैं, बच्चे नाइजीरिया में है, बेटी उनकी बंबई में रहती है, अकेले पति उनकी सेवा करते हैं। वो कह रही थी मेरे कारण वो मंदिर नहीं जा सकते, सेवा नहीं कर सकते, इसलिए आप राधा रानी से प्रार्थना करो कि मैं छूट जाऊं ताकि उनको सेवा करने के लिए अवकाश मिलेगा। और वो कहने लगी मुझे लगता है कि मेरे पति का जीव मेरे में अटका हुआ अभी तक थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए मैंने सोचा कि कल से मैं उनके प्रति गुस्सा करूंगी, उनको मैं थोड़ा कठिन परिस्थिति में डालूंगी, तो उनको लगना चाहिए क्या ये स्त्री है, इतना मैं कर रहा हूं फिर भी ऐसा बोलती है। तो ऐसे कहते कहते वो भी मेरे से निराशक्त हो जाएंगे, फिर मेरी आसक्ति किसमें रहेगी? केवल कृष्ण में रहेगी। और नियमित रूप से ये भजन का दो लाइन गाती है, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवन मरण गति आर नहीं मोर। और वो कहने लगी ये दोन लाइन में इतना कुछ है, इसको समझ लो तो सब समझ लिया, इसको नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा। तो हम कह रहे थे कि आपको आना चाहिए प्रवचन देने के लिए, ऐसी भावना में भगवान की दया है। और इसलिए भौतिक जो आसक्ति को दूर कैसे किया उन्होंने कि जो कुछ उनको अवकाश मिला उसके द्वारा अपने आप को कृष्ण के सेवा में लगाया, तो सब चिन्मय बन गया। और जो कुछ चिन्मय बन गया और उसके कारण जो चिन्मय वस्तु है वो भौतिक वस्तु के संपर्क में नहीं आ सकता, ये संभव नहीं है। आसक्ति ये भौतिक है, वो आसक्ति उनसे छूट गया। ये बहुत बहुत सुंदर बहुत अद्भुत है, बड़े बड़े योगी को भी कभी कभी ये संभव नहीं है, लेकिन कृष्ण भक्ति यहां प्रभुपाद जी लिखते इतना सरल है, आसानी से कोई प्राप्त कर सकता है सरल होने के कारण। अगर अवकाश मिले तो कई लोग जाकर देख सकते हैं उनकी भावना, 3-4 महीना बाकी और पूरा ये दो लाइन गाती रहती है हमेशा और कह रही थी भगवान से प्रार्थना करो मेरे लिए ताकि मैं यहां से मुक्त हो जाऊं, ताकि मेरे पति को सेवा करने का अवस्था या अनुकूल प्राप्त हो जाए। यह कृष्ण भावना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जप करना, भक्तों के संग में आना और इस प्रकार से हम कृष्ण को प्राप्त कर। मेरे पास खत्म हो गया समय, कुछ प्रश्न है? मुलाशी करता था हम केवल ऐसी एक कथा नहीं है, ये भी बहुत विरल है बहुत दुर्लभ है। तो भगवान ऐसे झलक देते रहते हैं हमारे श्रद्धा को बढ़ाने के लिए। जैसे हम प्रभु जी को कह रहे थे कि हाल ही में एक विद्यार्थी है वो एमबीए कर रहा है जहीन कॉलेज में और बहुत प्रचार करना चाहता अपने मित्रों को, वो सबको उन्होंने कहा कि मैं हरे कृष्ण डिवोटी हूं, तो लोग आते रहते उसके मित्रगण, और उसमें से उनके क्लास में जो पढ़ाई करने वाली एक विद्यार्थिनी वो भी बहुत सीरियस गंभीरता से कृष्ण भक्ति करती है, भोला माला जप करती है, और उनका जो परिवार के जो मित्र है वो अमेरिका में निवास करते हैं, और उनको एक पुत्र था उसका नाम है शौर्य, 20 साल का लड़का था, 20-21 साल, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वैसे स्टैनफोर्ड कैलिफोर्निया में बहुत प्रसिद्ध है, तो वहां पढ़ाई कर रहा था, हमेशा वो उसका पहला नंबर आया करता था। 3-4 साल पहले जब वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा आपको माइल्ड ल्यूकेमिया है, ब्लड कैंसर, तब वो 17-18 साल का था, तो धीरे धीरे वो ये जो लखनऊ कैंसर है अगर ठीक से दवाई लो रेगुलर चेकिंग करते रहो तो लोग काफी साल तक जी सकते हैं, वो मेडिसिन ले रहा था, रेगुलर चेकिंग हो रहा था। 2005 सितंबर या अक्टूबर में जब वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने चेक किया, उसको कहा कि मेडिसिन रिएक्ट कर रहा है और आपके लिए केवल 6 महीने बाकी है। देखो 21 साल का बालक, बहुत भविष्य का उज्ज्वल था, लेकिन ऐसे समाचार, और माता पिता का एक ही पुत्र, इतना भयंकर, और जैसे ही इस बॉम्बे में रहने वाले इस लड़की इसको समझ में आ गया, उन्होंने क्या किया, उससे बात किया और कहने लगी आप जाओ वेबसाइट पर, वहां आपको इस्कॉन के बारे में, हरे कृष्ण के बारे में कुछ दिखाई देगा, कुछ सुनो। तो फिर वो देखने के दिन के बाद फिर से मेल भेजा इसको, कहने लगा कि आई वांट टू रीड, मुझे कुछ पढ़ना है, अब ऐसा एक किताब भेजो जिससे मैं सारा सार जान जाऊं जो आप कर रहे हो, जब हरे कृष्ण में आप गए हो, मैं इसको एक ही किताब से मुझे पूरा सार जानना है। तो राहुल उसका नाम है जो बॉम्बे में निवास करता है, और उसके जो कॉलेज में, इन्होंने क्या किया उसको भगवत गीता भेज दिया कैलिफोर्निया में, भक्तों का संग नहीं है, कभी भक्तों को देखा नहीं है, और 4 दिन के बाद उनको और एक लेटर आ गया शौर्य का कैलिफोर्निया से, और लेटर में लिखा था कि आई एम क्वाइट सरप्राइज, मुझे आश्चर्य होता है कि कितना सुंदर ज्ञान इसमें है, एंड आई एम लैमेंटिंग फॉर योर पेरेंट्स, मैं आपके जो पालक है उनके प्रति मुझे दुख होता है क्योंकि उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया है, और मुझे यह भी दुख होता है, महसूस होता है कि मेरे पेरेंट्स भी इसको स्वीकार नहीं किया, बट ये जो किताब है इस सब ऐसे सार में बताया देता है कि हम कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है। फिर वो माता जी ने उसको प्रश्न पूछा, आपने कितना पढ़ा गीता, उत्तर क्या था, उन्होंने कहा कि 3 दिन में मैंने पूरे 700 श्लोक पढ़ लिए, पूरा भगवद गीता तात्पर्य के साथ। देखो हम लोग कोई बीमारी नहीं है लेकिन गीता फिर भी पढ़ नहीं सकते, यही सबसे बड़ी बीमारी है, गीता हाथ में लेते ही नींद आ जाता है। तो ये व्यक्ति जो मर रहा है 3 दिन के अंदर, जैसा भूखा व्यक्ति इतना भूख लगा रहता है उसको सूखी रोटी भी दे दो उसको खा लेगा, उसको तो शॉक हो गया इस लड़की को, 3 दिन के अंदर कोई गीता जो बीमार है जो बेड रिडन है वो पढ़ सकता है। फिर उन्होंने कहा और कुछ दो जो मेरे लिए, फिर माता जी ने कहा ठीक है आप क्या करो, जप करो, माला भेज दिया, पंचतत्व का सुंदर चित्र भेजा, राधा माधव का चित्र भेजा, नरसिंहदेव का चित्र भेजा, और उनके बेड में उनके सामने उन्होंने पंचतत्व लगाया, राधा माधव लगाया, नरसिंहदेव लगाया, फिर धीरे धीरे जप करने लगे। 3 महीने के अंदर 2 से 16 माला तक आ गए, कोई भक्तों का संग नहीं, यू आर स्टैंडिंग 16 माला हरिनाम जप कर रहे थे। उनकी बीमारी बढ़ती गई, शरीर साथ नहीं दे रहा था, बोल नहीं पा रहे थे, परंतु पंच तत्व के प्रति आकर्षण इतना बढ़ गया था, बार बार उसके पास देखते रहते थे। फिर माला कम होने लगा, स्वाभाविक है, शरीर साथ नहीं देता है। फिर एक दिन 26 फरवरी को शौर्य के पिताजी का इस माताजी को फोन आ गया और कहने लगे कि शौर्य इसमें लास्ट स्टेज, अंतिम घड़ी पे है और वो चाहता है कि आप उसके कान में हरे कृष्ण बोलो। उसके कान में हमने फोन दिया है, आपको सुनेगा और जब आप देखोगे सुनोगे हमारे से जब टेलीफोन डिसकनेक्ट हो जाएगा आपको जाना चाहिए उसकी मृत्यु होगी। ये लड़की मुंबई में है, वो कैलिफोर्निया में है और हरे कृष्ण का जप कर रही है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो जानती नहीं है जिनके लिए मैं जप कर रही हूं उनकी क्या स्थिति, वो जानती नहीं है, वो केवल जप कर रही है, वो तो कुछ बोल नहीं सकता। और 5 या 7 मिनट के बाद फोन डिस्कनेक्ट हो गया। तो वो जानती नहीं क्या हो रहा है, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, फिर आधा घंटे के बाद फोन आ गया उसके परिवार के लोगों का, उससे बात करना चाहते थे, वो बात करने लगे, उसका उस लड़के का नाम है राशि, उससे बात करने लगे कि आपका कीर्तन सुनते हुए उन्होंने अपने शरीर छोड़ दिया और जब आप कीर्तन कर रहे थे उसके पहले एक बार उन्होंने अपने पिताजी को देखा और पिताजी को कहा बाय बाय। ये जो बाय बाय में जो कर रहे थे उसमें दुख नहीं था, जैसे अगर आप बॉम्बे एयरपोर्ट में जाओगे वहां माता पिता अपने बच्चों को विदा देते हैं, वो अमेरिका जाता रहता है, वहां विरह है लेकिन दोनों खुश है, माता पिता भी खुश है बेटा भी खुश है, क्यों डॉलर मिल रहा है। तो बच्चा जाने पर भी वो बाय बाय में क्या है, एक्साइटमेंट है, बहुत सुख है कि मैं जा रहा हूं लेकिन फिर भी अच्छा ही है, पैसा कमा रहा हूं, तो उसमें आनंद ज्यादा है, विरह कम है, क्योंकि प्रोस्पेक्ट क्या है ज्यादा है, वो भी कमाएगा और हमें भेजेगा। तो वैसे ही एक बालक जो शौर्य ने बाय बाय किया और उस बाय बाय में दुख नहीं था कि मेरा हायर प्रोस्पेक्ट है, मैं उच्च प्रोस्पेक्ट को प्राप्त कर रहा हूं। फिर वो कहने लगे कि पिताजी को विदा करके फिर से उसका जो नजर उसकी जो दृष्टि है वो पंच तत्व पर और आंखें बंद नहीं हो रहे थे, ऐसे खुले आंखें रखते हुए हरे कृष्ण का कीर्तन सुनते हुए उन्होंने शरीर छोड़ दिया। और 2 दिन के बाद ये राहुल जिन्होंने सबको प्रचार किया था उसका एक लेटर आ गया, मैं चाहता था कि उसको ले आऊं, अगली बार मैं उसको पढ़ूंगा। वो लेटर लिखा था उसने राहुल के लिए और वहां उन्होंने डॉक्टर को कहा था कि ये लेटर मैं लिख रहा हूं लेकिन ये लेटर आप उसको तभी पोस्ट करो, ईमेल उसको सेंड दे दो जब मेरी मृत्यु हो जाएगी। वो लेटर राहुल को इसकी मृत्यु होने के बाद मिली, उसने लिखा था डियर राहुल, दिस इज शौर्य मेहता, दिस मे बी द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर फ्रॉम मी, ये पहला और अंतिम लेटर आपके लिए मैं लिख रहा हूं, आप मुझे नहीं जानते हो, यू मे नॉट नो मी बट आई नो यू वेल, आप मुझे नहीं जानते कि परंतु मैं आपको जानता हूं, आपके कारण मैं ये कृष्ण भावना का पालन कर रहा हूं, I'm very grateful to you. I'm very grateful. मैं आपसे बहुत आभार कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूं कि आपने राशि को इस्कॉन में ले आए। और कहने लगे प्लीज कीप अस ग्राउंडेड, ग्राउंडेड यानी कि जैसे फाउंडेशन डालते हैं, ध्वजा जब लगाया जाता है तो उसको जितना अंदर घुसाओगे उतना ध्वजा हवा सबको सहन कर सकता है। वैसे उसको पूरा स्ट्रांगली इसमें रखो कृष्ण भावना में। और वो लिखते हैं कि थैंक यू वंस अगेन, योर सिंसियरली शौर्य मेहता हरे कृष्ण, ऐसा करके उसको लेकर आया। और उसके बाद ये राशि ने पोयम लिखा है, ये सारा एक जो वृत्तांत है एक छोटा सा पोयम है, उन्होंने बहुत सुंदर पोयम है, भगवान परमात्मा ने उसको प्रेरणा दी। हम लेकर आएंगे अगली बार एक कविता को। तो हम देखते हैं कि कृष्ण, देखो भक्तों का संपर्क केवल टेक्नोलॉजी के द्वारा हो पाया, फोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा, परंतु इससे बढ़कर भगवान का जो टेक्नोलॉजी है उनकी दया, वो आप कहां भी क्यों ना हो, अगर आप थोड़ा इच्छा दिखाते हो, थोड़ा इंटरेस्ट व्यक्त करते हो, उसका परिणाम क्या होता है, वो आपके पास आ जाता है। इस बालक ने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया, ये क्या है मैं जानना चाहता हूं, किताब मांग लिया, किताब पढ़ लिया, जपा करने लगे और पंच तत्व को देखते देखते अपने शरीर को छोड़ दिया। इसलिए यहां ये श्लोक है, तेषाम अहम् समुद्रतः मृत्यु संसार सागर न चिराग, भवानी में चिराग पारता मैया वेश, बहुत जल्दी मैं आपको पार कर देता हूं। यही सबसे बड़ा हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सबसे बड़ा भेद प्राप्त कर सकते हैं, सबसे बड़ी संपत्ति है। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है कि इस भावना को प्राप्त करना कि मुझे अलिप्त तो होना है और कृष्ण ने मेरे मन को लगाना है। तो बहुत कहानियां हम देख सकते हैं भक्तों के जीवन में। अभी अभी आए थे, एक साल भी नहीं हुआ, कोई पॉलिटिक्स नहीं उनके जीवन में, सब कुछ आसानी से होकर भक्तों के प्रति विश्वास, भक्तों के प्रति प्रशंसा रखते हुए अपने कृष्ण की ओर चले गए। तो उनसे हमें प्रार्थना करना चाहिए कि वो हमें वहां रहकर हमारे लिए भी ऐसी प्रार्थना करें ताकि हम भी एक दिन, जिस दिन हमारा आएगा, हम भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप कीर्तन सुनते हुए भौतिक निर्जीव वस्तुओं के प्रति अनापत होकर हमारे बद्ध अवस्था को आध्यात्मिक बनाकर कृष्ण का जो चिन्मय धाम है वहां हम प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की।
प्रश्न यह कि आपने जो प्रवचन दिया उसका एसेंस है सिंपल फॉर द सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड फॉर द कॉम्प्लिकेटेड। तो प्रश्न यह है कि हाउ टू बिकम सिंपल व्हेन यू आर नॉट सिंपल, वे कॉम्प्लिकेटेड। हमको मालूम है कि हम सिंपल नहीं है, हम सरल नहीं है, हमारे में बहुत कॉम्प्लिकेशन है, और फिर भी हम कॉम्प्लिकेशन से हम कैसे सिंपल बन सकते हैं, ताकि हम भी सिंपल बने और वही गति को प्राप्त करें।
इसलिए कृष्ण ऐसे लीलाओं को रचाते हैं। कृष्ण की लीला 5000 साल पहले जहां पर नहीं हुई, ये भी कृष्ण की लीला है। वो गति भान उसको भगवान ने मुक्त किया, कृष्ण वो जो बर्तन था उसको भी उन्होंने मुक्ति प्रदान की। अभी हम देखते हैं भगवान ऐसे कथाओं को करते हैं हमें समझाने के लिए कि देखो भक्ति कितनी आसान है और तुम क्यों उसको कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, वाई आर मेकिंग इट कॉम्प्लेक्स। और पहला है कि जानना, जैसे आपने कहा कि स्वीकार करना अंतरंग में कि मैं कॉम्प्लिकेटेड हूं, मैं क्लिष्ट हूं। और जब इसको हम जानते हैं वो पहली शुद्धता है। ये जानना ही नहीं, हमारे अज्ञान को न जानना ये सबसे बड़ा इग्नोरेंस है एंड इट इज अ सिन। शास्त्र में कहा गया है कि नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट पावर एंड इग्नोरेंस इज डार्कनेस, बट टू नॉट टू रिकॉग्नाइज द इग्नोरेंस इज ग्रेटर डार्कनेस। उस अज्ञान को न जानना एक सबसे बड़ा अंधकार है, परंतु जब जानते हैं, जाने लगते हैं, हृदय में इसका अनुभव आने लगता है कि मैं कितना क्लिष्ट हूं, और कहते हैं कि देखो मैं कितना क्लिष्ट हूं, दैट इज द फर्स्ट साइन ऑफ कृष्णस मर्सी, कृष्ण की कृपा हमारे पर आ रही है, दैट इज द फर्स्ट थिंग, रिकॉग्नाइजिंग अवर अंधकार। जैसे किसी भक्त ने उनका विवाह हो रहा था और उनको सर्कमस्टेंसेस के कारण अभक्त से विवाह करना पड़ा, फिर वो कह रहे थे कि देखो मैं जब करता हूं मैं हरे कृष्ण के भक्ति में कर भक्ति भक्त भक्तों के संग रहता हूं जब करता हूं, तो जब उनकी पत्नी ने कहा आई एम ऑल्सो डिवोटी, मैं भी मंदिर जाया करती हूं, तो फिर जब किया तो मैं मंदिर भी जाती, जब अपने ने उस भक्तों के संग आ गई जब करने लगी, तब उन्होंने भक्तों को कहा कि मैं सोच रहे थे कि मैं भक्त हूं, अभी जानगी जी ने असुर। इसलिए यहां हम कहना वी ऑल्सो नो कृष्ण वी ऑल्सो नो राम, परंतु यहां कविराज गोस्वामी कहते हैं कि आई डोंट नो कृष्ण। तो उस स्तर पर हम लोग नहीं है, परंतु कम से कम रिकॉग्नाइजिंग अगर अंदर का इज साइन ऑफ सिंप्लिसिटी, तो वहां से फिर धीरे धीरे प्रगति होगी। जब जानते हैं कि मेरे अंदर अनंत है, तो दूसरा लक्षण क्या है, जिनके अंदर वो अनंत नहीं है, जो मेरे में है, उनके हम उनके प्रति उनका आश्रय लेते हैं। इसलिए भक्तों के बीच में जो भगवान के मर्चिता मर्जता प्राण हृदय परस्पर, ये केवल शुद्ध भक्तों के लिए नहीं है, ये साधारण भक्तों के लिए भी है। जब एक भक्त दूसरे भक्त से मिलते हैं, वो चर्चा करते हैं मेरे अंदर ही अनंत है, वो कहते हैं मेरे अंदर ही अनंत है, तुला मदद कर, और जहां दोनों मिलकर उसका अनंत ऐसा है ना, उसकी चर्चा करते तो फिर उससे उसको भी लाभ नहीं है और हमको भी लाभ नहीं है, फिर उसका भी अनंत हमारे में आ जाता है। शास्त्र में कहा गया है कि जब हम दूसरे दूसरों की अनर्थों की चर्चा करते हैं, क्योंकि हम ध्यान कर रहे हैं उसको गुणों का, और वो गुण हमारे में आ जाते हैं। जैसे कृष्ण के गुणों का ध्यान करने से क्या होगा, कृष्ण के गुण हमारे में आ जाते हैं, वैसे ही है। इसलिए दोनों भक्त बैठकर जब आदान प्रदान करते हैं, गृह मत्याति प्रचति मदद करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे प्रसन्न इज वेरी पावरफुल, वो कार्य करता है। इसलिए हम लोग कल यहां जल्दी इसलिए जाना है कि हमारे हमारे जो टीचर है राधानंद महाराज, वो जाने के पहले जो मंदिर के जो तथाकथित वरिष्ठ ब्रह्मचारी गण है, उनको कह रहे थे आपका सबसे बड़ा प्रायोरिटी क्या है कि आदान प्रदान करना, आप लोग बैठो, आप लोग बहुत बिजी हो गए अभी, तो आपको समय देना चाहिए, बैठकर कृष्ण कथा करनी है, चर्चा करनी है, सोल सर्च करना है कि मेरे में क्या आदान, और दूसरों से मदद मांगना है। उदाहरण लेते एक बार एक भक्त, हम लोग असेसमेंट कर रहे थे, असेसमेंट यानी कि परोख रहे थे कि हम कहां अच्छे और कहां बुरे हैं, कहां हमारे गलती है। लोगों से बात करते समय मैं ठीक हूं, तो खुद मान लेना कि मैं लोगों से बात करते समय रूढ़ व्यवहार करता हूं, ठीक भाषा का उपयोग नहीं करता हूं, मैं अच्छा बोलता हूं, मार्क देना 10-0। एक स्वयं परोखना और बाकी सात आठ लोग आपको परीक्षा करेंगे। तो एक भक्त ने अपने आप को हरिनाम जप करने में, मैं हरिनाम अच्छा जप करता हूं, तो उसमें मार्क दे रहे थे, उन्होंने क्या कि अपने को 7 मार्क दिया, बहुत चिंतन करके 7 मार्क दे दिया, और जब बाकियों का रिमार्क आ गया एवरेज 2.5 मिला था उनको, यानी कि जो अपना स्ट्रेंथ समझ रहे थे कि मैं अच्छा करता हूं, اور باقی لوگوں نے ایسے نہیں کہ سنت نے کہا اس کے اوپر, پالیٹکس نے کہا, سب لوگ الگ الگ بیٹھ کر اس کو ریمارک دیے تھے, تو ان کو ایوریج کتنا ملا تھا تب سمجھ گیا ارے میں سوچ رہا تھا میں جبا ٹھیک کرتا ہوں, پرنتو اب سمجھ گیا کہ میں بہت برا دن کر رہا ہوں. اسی لیے جو آدان پردان کرنا گھیا مکیا کی پرکتی اور بھوجنتم پرسپرم, بھوجنتم نے کی ایک جان پردان کرنا, تو اس سے کیا ہوگا ہم جان جائیں گے کہ میرے لیے غلطی ہے. بہت برا لگتا ہے جب کوئی کہتا ہے کہ تیرے میں غلطی ہے, اس لیے شاستر کہتے ہیں گپت روپ سے گھیم ہتیا کی پرکتی پبلکلی کسی کی نندا نہیں کرنی چاہیے, وہ آتم ہتیا کے سمان ہے, اس کی ہتیا ہو جائے. پرنتو پرائیویٹلی بیٹھ کر جب ہم اس کی چرچا کرتے ہیں تو اسے بہت لابھ ہو جاتا ہے. پھر دھیرے دھیرے کسی ہم نے جان لیا کہ میرے میں غلطی ہے, آئی ہیو فالٹ, آئی ایم ناٹ سمپل, آئی ایم ویری کمپلیکیٹڈ. تو یہاں روکتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹرین ہے. ہرے کرشنا شیلا پربھوپال کی, کولہاپور کے بھکت وند کی.
پوتر تھی نمت آپ